मुख्य समाचारों में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनसेह सोगावरे ने ऑकस गठबंधन में शामिल होने से पहले पैसिफिक नेशन के साथ परामर्श नहीं करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार की आलोचना। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 70 मिलियन डॉलर हाइड्रोजन हब की घोषणा की और भारत दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनसेह सोगावरे ने ऑकस गठबंधन में शामिल होने से पहले प्रशांत राष्ट्र के साथ परामर्श नहीं करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार की आलोचना की है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सुरक्षा समझौता है। सोलोमन द्वीप संसद के सामने बोलते हुए श्री सोगावरे कहते हैं कि देश को पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों से जुड़े एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मीडिया में ऑकस संधि के बारे में पता चला।
One would expect that as a member of the Pacific family, Solomon Islands or members of the Pacific should have been consulted to ensure that this AUKUS treaty is transparent, since it will affect the Pacific family by allowing nuclear submarine in Pacific waters.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने AUKUS संधि की घोषणा के अगले दिन श्री सोगावरे से बात की थी।
I did have that conversation with the Prime Minister the day following the announcement, and no issues were raised at that time in that discussion. But obviously, as time goes on and new relationships are entered into, there's obviously been some other influences in the perspective taken by the Solomon Islands Prime Minister.
Prime Minister ne 70 million dollar hydrogen hub ki ghoshna ki hai. बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और जीवन पर लागत के मुद्दे चुनाव अभियान पर हावी हो रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन फिर से नॉर्दर्न तस्मानिया में बास की सीमांत सीट के लिए गए हैं। ये वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां गठबंधन बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। विश्लेषकों के अनुमान की तुलना से अधिक 5.1% मुद्रास्फीति दर आई है और बढ़ती बिजली और ईंधन की कीमतें इसका एक बड़ा कारण है। चाहे कीमतों में बढ़ोतरी रूस द्वारा यूक्रेन में की गई घुसपैठ के पहले से ही हो रही थी, लेकिन स्कॉट मॉरिसन का मानना है कि कीमतों में वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय कारक ही कारण हैं।
Coal prices have gone up around the world, and now we're seeing those thermal coal prices come down. But to be fair, Mark, over the course of the first quarter of this year, the tensions in Europe were pretty apparent. So we've seen a lot of pressures on energy prices, and they have gone up. And we will see that change in the months ahead.
फेडरल सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के रहने की बढ़ती लागत को अंतर्राष्ट्रीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये चुनाव अभियान में एक प्रमुख मुद्दा है। ऊर्जा बाजार संचालक द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पूर्वी तट पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वित्त मंत्री साइमन बिर्मिंगहम ने सेवन नेटवर्क को बताया कि इसका दोष यूरोप के ऊर्जा संकट पर जाता है।
What we've managed to do is implement effective policies that have seen over the last couple of years household retail energy prices fall by about 8%. We're going to make sure we maintain those policies.
लेबर ने फिर से रहन सहन की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर निशाना साधा है। लेबर का दावा है कि गठबंधन के इन अस्थायी उपायों से चुनावों के बाद ऑस्ट्रेलियन लोगों को मदद नहीं मिलेगी। विपक्ष सिडनी के इनर वेस्ट में रीड की सीमांत सीट पर, जो वर्तमान में लिबरल फियोना मार्टिन के पास है, वहां अपनी चाइल्ड केयर नीति को परिवारों के लिए लागत बचत उपाय के रूप में बता रहा है। विपक्षी ट्रेजरी के प्रवक्ता जिम चार्मर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे से हाथ धो लिया है।
Power prices are going up. Healthcare is becoming harder to access and harder to afford. Groceries are going through the roof. Petrol is unaffordable for a lot of families right across the board. There are cost of living pressures, and this is a cost of living crisis on Scott Morrison's watch.
एक ऑस्ट्रेलियन सार्वजनिक नीति संस्थान का कहना है कि गठबंधन के तहत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड पर वेतन में गिरावट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। मैकेल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल चुनाव में प्रमुख चुनौती के रूप में पहचाने वाले दो राज्यों में यानी क्वींसलैंड में 1.9% और WA में 3.7% की गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषण देश में 1.2% की वास्तविक वेजेस में गिरावट को भी दर्शाता है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक माइकल बकलैंड का कहना है कि अगर मौजूदा नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं।
The incoming government needs to have a policy on real wage growth. It must address productivity, it must address worker insecurity. These are the states that will decide the next election, and if anyone wants to win their votes, they're going to need to address real wage decline.
वृद्ध देखभाल कर्मियों ने कम वेतन और काम की परिस्थितियों को लेकर राष्ट्रीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये 10 मई को होगी। ये अपनी तरह की पहली हड़ताल है और फेडरल चुनाव अभियान के बीच में आ रही है। ये फेयर वर्क कमीशन में वृद्ध देखभाल कर्मियों के वेतन को लगभग $29 प्रति घंटे या 25% तक बढ़ाने के लिए हेल्थ सर्विसेज यूनियन की कानूनी लड़ाई का अनुसरण करती है। वृद्ध देखभाल प्रदाताओं के संघ के नेता हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन ने ऑस्ट्रेलियन लोगों को फ्लू का टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया है। 65 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए आज शुक्रवार को मेलबर्न और सिडनी टाउन हॉल में टीकाकरण क्लिनिक में निःशुल्क फ्लू शॉट प्राप्त करने की व्यवस्था रही। इम्यूनेशन कोएलिशन द्वारा तैयार किए गए एक शोध में पाया गया है कि 65 वर्ष के कम आयु के केवल 35% वयस्कों ने इस वर्ष फ्लू का शॉट लिया है, जबकि 73% ने इस वर्ष के फ्लू के मौसम को पिछले साल और 2020 से भी बदतर होने की उम्मीद की है। श्री सटन का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को टीका लगवाना चाहिए।
It's probably not front and center in people's minds to see the usual flu stories. All I can say is don't wait for those flu stories to arise. That'll be too late. That'll mean that tens of thousands of people have already come down with it. So get ahead of the curve, literally, and get your protection now going into winter.
संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और पड़ोसी सहयोगियों को सैन्य उपकरण भेजना आसान बना देगा। ये 417 के सामने 10 मतों से पारित हो गया है और अब कानून में हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस जाएगा। ये 1941 के बिल का एक अद्यतन है जिसे पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने सहयोगियों को नाजी जर्मनी से लड़ने में मदद के लिए इस्तेमाल किया था। ये बिल कुछ प्रतिपूर्ति आवश्यकताओं को वेव कर देगा और उपकरण लीज को 5 साल से आगे बढ़ा देगा। सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का कहना है कि नया कानून अमेरिका को तेजी से कार्रवाई करने की अनुमति देगा।
The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 revised this pivotal program, waiving time-consuming requirements on the president's authority to send critical defensive resources to Ukraine. It's important to note that it's about time. Time is very important when lives are at stake.
Shri Biden ne Congress se Ukraine ke liye hathiyaron, gola barood aur anya sainya sahayata ke liye $33 billion yani $46 billion ka samarthan manga hai. और भारत में दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ नीटू को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि वो सांप्रदायिक दंगे में बहुत ही सक्रिय रूप से संलिप्त था और अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने बताया कि 2010 से अब तक उसके खिलाफ लूटमार, छिनैती, चोरी और शस्त्र कानून के तहत 6 मामले दर्ज किए गए थे और वो जहांगीरपुरी इलाके का हिस्ट्री शीटर है। जैसा कि विदित है, 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 समुदायों में झड़प हो गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक आम व्यक्ति घायल हो गया था। पुलिस ने मामले के 5 आरोपियों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 54 रुपए लगभग 72 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलियन रग्बी लीग आयोग के अध्यक्ष पीटर वी लैंडिस ने कहा है कि अगर न्यू साउथ वेल्स सरकार स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए 800 मिलियन डॉलर के वादे का सम्मान नहीं करती है तो वो सिडनी से NRL ग्रैंड फाइनल बाहर ले जाकर करेंगे। ये बयान खेल मंत्री स्टुअर्ट एयर्स और प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट के साथ बैठक से पहले आए, जिसमें लीग ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से एक और स्टेडियम के उन्नयन के लिए निर्धारित धन उपनगरीय मैदानों पर खर्च किया जाना चाहिए। ब्रिस्बेन ने पिछले साल महामारी के कारण फाइनल की मेजबानी की थी और क्वींसलैंड ने फिर से मैच की मेजबानी करने में अपनी रुचि दिखाई है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में बारिश में थोड़ी राहत, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में रुक रुक कर बारिश, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में बारिश, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।